न्यायियो अध्याय 21। इसराइली पुरुषों ने तो मिस्पा में शपथ खाकर कहा था कि हमसे कोई अपनी बेटी किसी बिन्यामिनी को ना व्याह देगा। न्यायियो 21 अध्याय पहला पद। मैं कहूंगा कि बाइबल की अनेक शपथ मूर्खतापूर्ण है, जैसे ये शपथ। शौल राजा ने भी शपथ खाई थी कि कोई भी इसराइली उस समय तक खाना नहीं खाएगा जब तक पूरी की पूरी फिलिस्ती सेना का नाश नहीं हो जाता। इसका परिणाम यह हुआ कि इसराइली सैनिक अंत में थक कर चूर हो गए। यदि उन्होंने भोजन कर लिया होता तो नई ताकत के साथ वे पूरी फिलिस्ती सेना का नाश कर देते। ये उस समय की बात है जब योनातन फिलिस्तियों को खदेड़ रहा था। दूसरी ओर ये भी देखिए, शौल घमंड में आकर अपने आप को बहुत बड़ी हस्ती बना रहा है। योनातन जंगल में फिलिस्तियों को खदेड़ रहा था, अतः उसने शौल की शपथ की घोषणा नहीं सुनी थी। वो बहुत थक चुका था और शहद खाया क्योंकि उसकी राह में वो छाता उसे दिखाई दिया। शहद खाने से उसमें नया शक्ति संचार हुआ। युद्ध के बाद शौल ने कहा कि किसी ने शपथ निश्चय ही तोड़ी है। योनातन का नाम लेने का साहस किसी को नहीं हुआ। तब शौल ने सेना को दो भागों में विभाजित किया और कहा कि योनातन चिट्ठी डालेगा। इस प्रकार चिट्ठी शौल और योनातन के नाम निकली तो शौल विस्मयपूर्वक बोला, योनातन तूने ये क्या किया? योनातन ने कहा, पिताजी पूरी सेना थक कर चूर हो गई थी। मुझे मधुमक्खी का छाता दिखा तो मैंने घोड़ा दौड़ाते हुए उसमें भाला मारा। भाले में शहद आ गया और मैंने खा लिया। मुझे क्या मालूम था कि आपने ये शपथ खाई है? तभी तो हमारे सैनिक थक कर चूर हो गए थे। यदि वे थकते नहीं तो हम फिलिस्तियों का सर्वनाश कर देते। शौल ने आज्ञा दी कि योनातन को मार डाला जाए। ओह मूर्ख आदमी, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उसने अंत में कहा, मैंने तो मूर्खता ही की है। यह सच ही था। हमने पिछले अध्ययन में देखा है कि यिप्ता ने भी कैसी मूर्खता की मन्नत मानी थी। मेरे घर से जो भी वस्तु सबसे पहले बाहर आएगी मैं उसे यहोवा को होम बलि चढ़ा दूंगा। बाइबल कई बार मुंह बंद रखने के बारे में कहती है और मेरे विचार में ये एक बुद्धिमानी का काम है। अपना मुंह बंद रखकर लोगों के सामने मूर्ख बने रहना मुंह खोलकर अपने आप को मूर्ख सिद्ध कर देने से कहीं उत्तम है। इसी प्रकार ये भी एक मूर्खता की शपथ थी क्योंकि उन्होंने 600 पुरुषों को छोड़ सबको मार डाला था। अब क्या करें? इनको हम अपनी बेटियां भी नहीं देंगे कि वे विवाह करके संतान उत्पन्न करें। ऐसे तो ये गोत्र समाप्त हो जाएगा। एक काम हो सकता है, देखो हमारे साथ किस नगर ने नहीं दिया। किसी ने कहा, गिलादी याबेश। गिनती करने पर पाया गया कि वास्तव में वहां से कोई उपस्थित नहीं है। हम अपनी शपथ के अनुसार उनका नाश करेंगे, परंतु कुवारियों को लेकर बिन्यामिन के पुरुषों से ब्याह देंगे क्योंकि बेटी न देने की शपथ में वे हमारे साथ नहीं थे। देखिए मनुष्य कैसे एक के बाद एक गलती करता जाता है। उन्होंने याबेश का नाश कर दिया। उन्हें वहां केवल 400 कुवारियां मिली तो इन 600 पुरुषों के लिए पूरी नहीं पड़ती थी। अब आगे क्या किया जाए? शीलो एक धार्मिक केंद्र था और वहां कुवारियां यहोवा के पर्व में लोक नृत्य करने आती थी। अतः उन्होंने शेष बिन्यामिनियों को सलाह दी कि वे पर्व के समय उन कुवारियों का अपहरण कर ले और जब उनके वृद्ध शिकायत करेंगे तब हम सब एक होकर उनसे उन कुवारियों को तुम्हारे साथ ब्याह देने का निवेदन करेंगे। इस प्रकार बिन्यामिनियों का गोत्र मिट जाने से बच गया। आप ये न सोचें कि यहोवा ऐसी बातें अनदेखी करता। सत्य तो यह है कि धर्मशास्त्र में इनके उल्लेख करने का उद्देश्य यही है कि यहोवा ऐसी बातों को दंडित ठहराता है। इसका दूसरा उद्देश्य ये दर्शाता है कि उन्हें परमेश्वर का नाम मात्र भय नहीं था। उस समय अराजकता का राज्य था, सब अपनी मन मर्जी किया करते थे। उन दिनों में इसराइलियों का कोई राजा न था, जिसको जो ठीक सूझ पड़ता था वही वो करता था। न्यायियों 21 अध्याय 25 पद। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि मन मर्जी करना हमेशा गलत होता है। अपनी मानसिकता और स्वभाव के कारण मनुष्य पशु का सा जीवन अपना लेता है। आइए हम गिनती अध्याय 6 निकाल लें। मेरे लिए ये अति सुंदर गदांश है, एक दूसरे को आशीष देने के लिए बहुत अच्छा है। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, यहोवा तुम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे।